काल के मन में बालकवत निर्विकार दिगंबर मुद्रा धारण करने की लालसा जागृत होती है और एक ऐसी दिगंबर मुद्रा पूज्य मुनि क्षमा सागर जी के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन हो जाता है, ऐसे चरणों के मैं अपना शत शत नमन करता हुआ यहां बैठे समस्त लोगों की ओर से विनम्र शब्दों में उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमयी वाणी से हमें अभिरूढ़ करें। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज।
बीजांकुर जनना भव बीजांकुर जनना राद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह फिर एक दिन हमारे पास इस बात के लिए है कि हम अपने बाबत, अपनी जिंदगी के बाबत कुछ थोड़ा सा समझ सकें, सीख सकें। मुझे हमेशा लगा करता है कि कितने थोड़े से क्षण हैं हमारे पास, जब हम अपने भीतर जो कुछ घटित होता है वो देख पाते हैं, और जो कुछ हमारे भीतर घटित होना चाहिए उसके बाबत भी कुछ सोच पाते हैं। घटित तो हो रहा है कि हम निरंतर अपनी जीवन की ऊर्जा अपने जीवन के स्रोत से हटते जा रहे हैं, घटित यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन के स्रोत के अधिक निकट हों। सबके भीतर वो है, अज्ञेय की भाषा में सोया है एक झरना अमृत का सबके भीतर, इंतजार है कि कोई आए और एक नई धार बहा दे। लेकिन ऊपर उस झरने के जो कुछ हमारे ही द्वारा इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से वो रिसोर्स ढक गया है, वो कौन अलग करेगा? जिसने ढका है वो ही ना अलग करेगा। अगर कोई ढकने वाला दूसरा है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जब समय आएगा तो उसको हटा देगा और हमारा वो झरना, हमारे भीतर जो पवित्रताओं का है वो झर जाएगा। लेकिन मनीषियों का, आचार्य भगवंतों का कहना तो यही है कि जो जस करी सो तस फल चाखा। यहां तो जैसा करिएगा वैसे ही पाइए, कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी, ऐसा सोचना पड़ेगा। अंततः जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हम हैं। हमारे भीतर बैठी हुई भगवत्ता इसके लिए जिम्मेदार है। और सबकी खोज उसी सच्चाई की है जो हमारे भीतर सोई हुई है। ये तो एक बहुत बाहरी प्रयास है उस सच्चाई को प्रकट करने का, पर वो सच्चाई प्रकट कैसे होगी? मुझे एक उपनिषद की कहानी याद आती है। चार बेटे पिता के हैं और पिता का अंत निकट है। वो सोचता है कि उसके बेटे मेरे मरने से पहले सच को जान लें। उस जमाने की कहानी सुना रहा हूं, आज से टैली मत करिएगा नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। कौन सा पिता खोजिएगा जो कि आखिरी समय अपने बेटे से ये इच्छा रखे कि वो मेरे मरने से पहले सच्चाई को पालें? वो ये अपेक्षा रख सकता है कि वो अपने फन में माहिर हो जाए, मैंने जो दुकानदारी छोड़ी है उसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएं? ये तो अपेक्षा कोई भी रख सकता है। या कि आखिरी समय मेरा ठीक से तीमारदारी वगैरह उपचार करवाएं, और इससे ज्यादा क्या कोई पिता आज अपेक्षा रख सकता है? लेकिन उस समय किसी पिता ने अपेक्षा रखी थी अपने बेटे से। और ज्यादा दूर नहीं जाना है, मुझे इंदौर के डॉक्टर साहब ने सुनाया था कि जब उनके बेटे ने, मुझे ऐसा याद है 1986 में, क्या करके पैर छुए थे कि मैं MSc हो गया, मास्टर ऑफ साइंस हो गया, तब उन्होंने अपने बेटे से ही पूछ लिया था कि व्हाट डू मीन बाय द लोक एंड अलोक एंड व्हाट डू मीन बाय द सोल एंड नॉन सोल, आर यू नो? अगर तुम ये जानते हो कि आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा और अनात्मा क्या है, और लोक और अलोक क्या है, तब तो कह सकते हो कि हाँ मैं मास्टर ऑफ साइंस हूं। बाकी एक किसी विषय में मास्टरी करके और मास्टर ऑफ साइंस तो कोई भी कह सकता है। तब सच्चाई की खोज के लिए उस बेटे ने, फिर मैंने सुना था कि तीर्थंकर और दूसरी जो स्क्रिप्ट हैं, दर्शन पढ़ना शुरू कर दिया था। आज भी हैं लेकिन बहुत रेयर है, बहुत थोड़े से हैं। बेटे से चाहा है, चारों बेटों से, और कह दिया है कि मैं जब तक मरूं उसके पहले जाकर के सच को खोज करके लौट आऊं। मैं पता नहीं कितने दिन का है हूं, जल्दी लौट के आना। बेचारों गए और पिता की जिंदगी शायद उनके लौट आने तक ही शेष थी। कथा को प्रतीक मानिएगा, इतनी जल्दी कोई पाके नहीं लौटता है, न कोई इतने दिन ज्यादा जीता है। लेकिन जहां विश्वास है, जहां विश्वास जीवित है, वहां सच्चाई को आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। और विश्वास मरता भी नहीं है सच्चाई के आने तक, ये ध्यान रखिएगा। विश्वास पिता है, सच्चाई की खोज में उसके बेटे निकले हैं। सच पाकर के ही विश्वास संपन्न होता है, विश्वास पूरा होता है, खत्म नहीं होता, वो अपनी जीवन को समाप्त कर देता है। क्योंकि विश्वास सच्चाई को पाने तक के लिए ही है और इससे ज्यादा नहीं है। लौट के आए तो पहले वाले बेटे से बहुत जिज्ञासा के साथ पूछा कि सच्चाई के बारे में तुमने क्या जाना? तो पहले वाले बेटे ने जो वेद की ऋचाएं याद करी थी वो फौरन पिता को सुना दी। पिता उदास हो गए, अरे क्या कोई सच्चाई खोज के नहीं लौटा बेटा, वेद की ऋचाएं रट के लौटा है? दूसरे से पूछा, पाया सच्चाई को? उसने उपनिषद के श्लोक दोहरा दिए। पिता और निराश हो गए, थोड़ी सी आशा थी तीसरे पर। तीसरे से पूछा, क्या पाया सच्चाई में? उसने सारे धर्म ग्रंथों का सार सुना दिया। पिता और उदास होकर के चुपचाप लेटने को हो गए। चौथा वाला चुप, उसने कुछ नहीं कहा, ये सोच करके कि थक गए होंगे पिता, बहुत देर से इतनी बातें सुन रहे हैं, फिर मौका होगा तो बता दूंगा। अचानक पिता को याद आया कि अभी एक और शेष है, विश्वास, सच्चाई को पाने के लिए आखिरी दम तक जिंदा रहता है इस आशा से, कभी भी कोई शेष है। चौथे वाले बेटे को कहा कि तुम बताते क्यों नहीं, तुम ये सोच रहे होगे कि मैं थक गया हूं इसलिए सुन नहीं पाऊंगा, कहो तुम एक और शेष हो, कहो तुमने क्या पाया। वो तो चुप खड़ा हुआ था, कुछ कहा ही नहीं उसने, कहने के लिए था ही नहीं आज। पिता उठ करके खड़े हो गए और गौर से आकर के उस बेटे की आंखों में झांक करके देखा, उसके चेहरे पर एक बार गौर से देखा तो आंखों में एक गहरी शांति थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। कहते हैं कि तब पिता ने मरने से पहले अपने बेटे के पैर छू करके माथे से लगाए थे कि वास्तव में मैं जीत गया, मेरे बेटे ने सच को पा लिया। मैं सच लिखता रहा और लिख लिख कर सब झूठ करता रहा, जो लिखा नहीं जा सका, जो कहा नहीं जा सका, जो सिर्फ जिया जा सकता है वो सच है। क्या हम इस तरह जी पाएंगे? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, एक गहरी स्वीकृति जो कि हमें एक परम संतोष में लेकर के चली जाती है, जहां आंखों में गहराई और शांति दिखाई पड़ती है, जहां तिलक लगा के नहीं कहना पड़ता है कि मैं शांति के रास्ते पर निकला हूं, जहां कोई बैनर लेकर के ये नहीं कहना पड़ता है कि मैं किस चीज के लिए जा रहा हूं, जहां पर हमारा जीवन अनायास ही हमारे भीतर से उस परम सत्ता को प्रकट कर देता है, उस सत्य को प्रकट कर देता है। क्या ऐसी ही सच्चाई पाने के लिए हम यहां इकट्ठे नहीं हुए थे? मेरे ख्याल से तो मैंने तो यही सोचा था कि हम सब क्या करें, कुछ ऐसा पाप करने के लिए तो एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, कहीं कोई झगड़ा होता है तो घेर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी आदमी को रास्ते चलते हुए और गिर गया था और उसे उठा लिया हो तो 10 लोग खड़े होकर के ये भी नहीं कहते कि इतना भला काम किया, बल्कि आजू बाजू से निकल जाते हैं। बुराइयां संगठित बहुत जल्दी हो रही हैं, अच्छाइयों को बुढ़ापा आ जाता है संगठित होने में। क्या हम जवानी में अच्छाइयों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे? शायद उन्हीं अच्छाइयों को इकट्ठा करने के लिए, उसी सच्चाई को इकट्ठा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। ये कोई दर्शन नहीं है, ये कोई डॉग्मा नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन है, रियलिटी। रिलीजन इज इन द रियलाइजेशन, धर्म हमारी अनुभूति में है। क्या हम ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि हम सच्चाई के निकट हैं, हम अपनी स्वाभाविकता के निकट हैं, हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं जैसा हमें बाय बर्थ मिला था, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल एकदम भोला भाला जीवन मिला था, हमने उसको कैसा कर लिया? क्या हमारे भगवान को हमसे यही स्वीकार है? नहीं, हमारे भगवान ने ऐसा नहीं चाहा होगा, उसने ऐसा चाहा होता तो हमको पहले से ही वैसा ही क्यों नहीं भेज देता, हमें उसने ऐसा नहीं भोजा। ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, ऐसा कोई है आज? दाग लगा के रख देने वाले सैकड़ों हम और आप जैसे हैं, लेकिन आज भी कोई हो सकता है जो कि इसको अपनी 5 इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके और इस चादर को ज्यों की त्यों रख दे। हमने इसलिए ये प्रयास किया है। हम लोगों के पास जाकर के तो आप यहां से जाएंगे और कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन वो तो आप कहिएगा ही, और ऐसा भी कुछ करिएगा कि लोग आपके पास से गुजरें और उन्हें लगे कि कहां से लौट करके आए, लगता है किसी और संसार से अलग जगह से लौट करके आए हो, इतने गहरे और इतने शांत और इतने पवित्र कैसे दिखाई पड़ रहे हो? क्या ऐसा घटित नहीं हो सकता हमारे जीवन में? हमें क्यों कहना पड़े? हमारा जीवन क्यों नहीं इस चीज को प्रदर्शित करे? कर सकता है, फिर भी ये तो हुई बहुत छोटी सी बात, पर प्राप्ति का उपाय भी तो होना चाहिए। जिस सच के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसको चुप रह के पाया जा सकता, वो चुप्पी बहुत बाद में आती है जबकि हमारे भीतर वो चीज प्रकट हो जाती है। पर प्रकट करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहली चीज, सच को लेकर के कभी शंकित ना हुआ जाए। पहली चीज देता हूं, सच को लेकर के कभी शंका न की जाए। हम जितना अधिक झूठ पर विश्वास कर लेते हैं उतना सच पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम संदेह कर लेते हैं सच्चाई पर और झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। पहला काम, मैं आपके जुम्मे क्या, मैं अपने जुम्मे सौंपता हूं, आपको अपने से अलग कहां मान रहा हूं, मैं अपने जुम्मे सौंप रहा हूं और आप मेरे उस सपने में शामिल हैं, इसलिए कह लीजिएगा कि आपके जुम्मे सौंप रहा हूं। सच्चाई के प्रति जरा भी शंका नहीं करेंगे, जरा भी संदेह नहीं करेंगे। सच्चाई से अधिक हम किसी और चीज की आकांक्षा नहीं करेंगे और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करेंगे। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? एक सेकंड के लिए भी नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, एक सेकंड के लिए तो कर पाएंगे, एक दिन के लिए उसके बाद कर पाएंगे, एक पूरी जिंदगी के लिए भी उसके बाद जरूर कर पाएंगे। पर सवाल यह है कि कौन एक सेकंड के लिए इस बात के लिए तैयार होता है कि वो सच्चाई के सिवाय और कुछ नहीं चाहेगा उस एक सेकंड में, और हम सच्चाई से घृणा नहीं करेंगे, तीसरी बात। और चौथी बात, सच्चाई के रास्ते को छोड़ करके किसी गलत रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर न चलेंगे, न चलते हुए की प्रशंसा करेंगे। हमने आज तक जितना सम्मान सच्चाई को नहीं दिया, शायद उससे कहीं अधिक बुराइयों को दिया, क्योंकि हमने बुराइयों को फलते फूलते देखा है और सच्चाई को, ईमानदारी को जमीन पर, रास्ते पर खिसटते देखा है, इसलिए हम अविश्वास कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ईमानदारी नहीं घिसट रही है, पुरानी बेईमानी को घिसटने में मजबूर होना पड़ रहा है, और ये हवेली जो बन रही है वो इस बेईमानी की नहीं है, वो किसी पुरानी ईमानदारी की है। अगर आपको देखनी है सच्चाई और बेईमानी, तो उस आदमी को सोते समय और उस आदमी को पूरे दिन जीते समय देखिएगा कि वो किस छटपटाहट में जीता है, 6 खंड के महल में। और उस आदमी को देखिएगा जो एक 10 पैसे का पेपर बिछा करके, 10 पैसे का उस समय आता था, अब 1 रुपये के 1.5 रुपये का आता है, चलिए उसको बिछा करके वो चुपचाप सो जाता है, लेकिन उसका जो फुलफिलमेंट है, उसका जो आत्मसंतोष है, वो उसके पास नहीं है। ईमानदारी आत्मसंतोष देती है, ईमानदारी से और कुछ मत चाहिएगा। अगर आप ईमानदारी से और कुछ चाहते हैं, संसार चाहते हैं, तो मानिए बेईमानी सीखना शुरू कर दीजिएगा, संसार तो बेईमानी से मिलेगा। रोटी ईमानदारी से मिलती, कोहिनूर एक है और जो झपट ले उसको मिल सकता है, जो बेईमान हो उसको मिल सकता है। आप यहां से निकलेंगे, क्या पाने निकलेंगे? मैं तो सोचता हूं कि आप एक आत्मसंतोष यहां से लेकर के, और उसी आत्मसंतोष को प्रिजर्व करने के लिए, उसी आत्मसंतोष को अपने भीतर और हर एक को बांटने के लिए कि देखो हमारे पास ऐसा है, और हमारे जीवन से आप क्या ले सकते हैं, हम अपने जीवन से किसी को क्या दे सकते हैं, क्या आप ऐसा अपना जीवन बनाने की कोशिश करेंगे? सच्चाई पर हम अविश्वास नहीं करेंगे, सच्चाई का हम सम्मान करेंगे। और पांचवी बात, कि हम किसी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की गलतियां नहीं देखेंगे, क्योंकि जो चलता है वो जरूर से गिरता है। जो बैठा हो और ये अहंकार करे कि मैं तो सारी जिंदगी कभी गिरा ही नहीं, जो एग्जामिनेशन ना दे और ये अहंकार करे कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो कर सकता है। जो एग्जामिनेशन देता है उसके पास होने की भी उतनी गुंजाइश है जितनी उसके फेल होने की गुंजाइश। तब कोई अगर सच्चाई के रास्ते पर चले और उसकी कोई गलती हो जाए, तो अगला कदम है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को गिरते देख करके हंसना नहीं, बल्कि उसको संभालना। छठवां कदम रखिएगा कि सच्चाई के रास्ते पर कोई भी चलना शुरू कर दे उसको संभाल लीजिएगा। और सातवां कदम, कि अपने भीतर अगर सच्चाई आ गई है तो उसको मैनिफेस्ट करिए, उसको फैलाइएगा लोगों के बीच, और आखिरी कदम जहां जो भी सच्चाई है उससे प्यार करिएगा। सच्चाई को सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई से प्यार करना बहुत जुदी बात है। हम इन दिनों यही जानने बैठे थे कि सच क्या है और वो हमारे पास कितना उपलब्ध है, हम उसका कितना सम्मान कर पाते हैं और हम उसको कितना प्यार दे पाते हैं। जो सच को प्यार करता है वो मानिएगा पूरी दुनिया को प्यार करता है, क्योंकि यहां सच के सिवाय और है क्या। लेकिन आंख होनी चाहिए उस सच को देखने की। हर एक के भीतर अगर वो सच्चाई दिख जाए, जो सच्चाई मेरे भीतर है वो सच्चाई सबके भीतर है और उस सच्चाई का मुझे सम्मान करना है। धड़कन से बड़ी कोई सच्चाई हो सकती है, जीवन से बड़ी कोई सच्चाई हो सकती है। और आप अगर सच्चाई का सम्मान कर रहे हैं तो आप जीवन का सम्मान कर रहे हैं, आप हर सांस का हर धड़कन का सम्मान कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी घटना, पता नहीं किसके जीवन की है, घटनाएं सब किसी न किसी के जीवन की हुआ करती हैं, इसलिए उनके जिंदा होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन घटनाएं हमारे जीवन को भी आंदोलित कर दें तो भी फिर हमारा जीवन बनके हमें भी जीवित कर देती है। एक छोटा सा किसान है, उसकी एक बहुत भोली सी और बहुत प्यारी सी गाय है। किस्सा कहानी की तरह मत सुनिएगा, किसी की जिंदगी की तरह सुनिएगा। मैं ऐसी कहानियां बहुत कम मौकों पर याद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहानी के साथ बह जाऊंगा। भावुक होना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन भावात्मक होना बुरी चीज भी नहीं है। क्या हम कोई भावात्मक क्रांति कर पाएंगे? करनी तो चाहिए। और वो छोटा सा किसान है, उसकी बहुत प्यारी सी गाय है और उसको गाय से बहुत प्यार है। उसके जैसी गाय आसपास कहीं भी नहीं है। सबकी आंख उसकी गाय पर है कि चाहे जितने पैसे लग जाएं, गाय हमको मिल जाए। मिल जाता है कोई तब जबकि बहुत सारा प्यार दिया जाए, और छूट जाता है कोई तब जब बहुत सारा पैसा देकर के उसे खरीदने की कोशिश की जाए। आज हर चीज हमारी हो सकती है, वशर्ते कि उस चीज को हम सम्मान दें, वशर्ते कि उस चीज को वो जहां है वहीं पर ठीक से रहे, इसके लिए कोशिश करें। हमारी कोशिश पूरी ये है कि जो चीज जहां है वो वहां क्यों होनी चाहिए, वो हमारे पास क्यों नहीं होनी चाहिए। और यहां से शुरू होता है पूरा संसार, यहां से सब शुरू हो जाता है। और यहीं से तो शुरू हो गया उस किसान की जिंदगी का संसार। सब लोग चाहते थे, सबकी आंख उस गाय पर लगी थी। अच्छी आंख नहीं लगी थी, बुरी आंख लगी थी कि कब कब किस तरह इसको पाया जा सके। एक दिन तो ऐसी नौबत आ गई, सब तो शायद यही चाहते हैं कि ऐसी नौबत आ जाए कि जो जिसके पास है वो उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, यही ना। उसकी भी ऐसी नौबत आ गई कि खुद के खाने के लिए तो ठीक है, जब तक अपने खुद के खाने के लिए नहीं था तब तक उस आदमी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन जब अपनी गाय के लिए उसके पास खास नहीं थी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मुश्किल हमारे साथ यह है कि आस पड़ोस में किसी के खाने के पास ना खाने के लिए ना हो तो हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे पास खाने के लिए ठीक ठीक ना हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहां बहुत उल्टा था। मैं पता नहीं कैसी उल्टी सी कहानी सुनाता हूं, किसी और किसी लोक की सुना रहा हूं, शायद इस लोक की नहीं हो सकती, लेकिन है इसी लोक की। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे आप इसी लोक का मानते हैं, तो मेरे सामने सामने कैसे कह सकता हूं, मेरी इन आंखों ने देखा है, इतना भी प्यार देखा है पशु के प्रति। और इससे एक कदम और आगे बढ़ूं तो इतना प्यार भी किया है पशु के प्रति। और ये नौबत आई कि क्या करें, घास नहीं है, गाय को क्या खिलाएं, बेच दें। बेचने की बात तो मन को मत डालती है, आंख से आंसू निकाल के ले आती है। किसी अपने को चार पैसे के लिए बेच दें, आज तक अपना मानकर किसी के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया है क्या? हमने किया होगा, लेकिन उस किसान ने कभी नहीं किया। और उसने अपना गांव छोड़ना तय कर लिया, शहर में आने के लिए मजबूर हो गया। शहर में आया सिर्फ इसलिए कि नौकरी करेगा, चार पैसे कमाएगा, खुद तो बाद में खाएगा, पर गाय के लिए घास खिला पाएगा। इसके लिए नौकरी करी थी, किसी और चीज के लिए नहीं, अपनी पेटी भरने के लिए नौकरी नहीं करी थी, अय्याशी के लिए नौकरी नहीं करी थी, लग्जूरियस होने के लिए नौकरी नहीं करी थी, अपनी नेसेसिटीज थी, कुछ आवश्यकताएं थी, वो भी अपने जीवन के लिए, जिसको अपना माना उसके जीवन के लिए। और शुरू हुई नौकरी, और जब कोई नौकर हो जाता किसी का, जब उसकी खाता है तो बजाना भी उसकी बनती है। उस सेठ ने कहा कि कहीं कोई एक ऐसी गाय मिल जाएगी जो कि 5 सेर दूध दे सके, तुम्हारी जानकारी में तो होगी। मालिक का आदेश, कहीं कोई गाय 5 किलो दूध वाली तो कैसे मिलेगी, मेरी गाय है। और जब अपनी गाय के बारे में सोचता था तो फिर पीड़ा होती थी कि अपनी गाय। फिर एक मन धीरे से करा कि कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, अब जब मैं ही सेठ के यहां रह रहा हूं तो सेठ के यहां गाय भी आ जाएगी, मेरी आंख के सामने रहेगी, देखूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, प्यार कर सकूंगा, करूंगा, क्यों ना अपनी ही गाय यहां ले आऊं। तो सेठ से कह दिया कि गाय मिल जाएगी, 1200 रुपए लगेंगे, 5 किलो दूध देगी एक बार में, चाहो तो ले आऊं। सेठ को क्या चाहिए, ले आओ। गाय ला करके खड़ी कर दी। इसके बाद भी विश्वास नहीं हुआ गाय को देख करके कि 5 किलो दूध दे देगी। जिस आंख में किसी की जिंदगी के प्रति विश्वास ना हो, वो आंख कैसे विश्वास कर सकती है। लगा के दिखाओ, 1200 रुपए दे रहे हैं ना, गाय नहीं खरीदी, 5 किलो सुबह शाम दूध देने वाली मशीन खरीदी है, खरीदी जा सकती है। पूरा युग इस मशीनरी से गुजर रहा है, आदमी तक को हमने इस तरह मान लिया है कि वो मशीन है और हमारे उपयोग के लिए है। एक पूरा सिद्धांत यूटिलाइजेशन, उपयोगितावाद, हाउ टू यूजेस अदर्स, कैसे दूसरे का उपयोग कर लें, जिस किसी तरह से, उस पर क्या गुजरेगी कोई मतलब नहीं। 5 किलो दूध लगा करके दे दिया, कहा कि जाओ गाय बांध आओ गौशाला में। अब गाय काहे को जाएगी, गाय मशीन होती तो चली जाती जिस चाहे के साथ, नहीं गई। जिसकी गाय थी उसने, किसान ने धीरे से हाथ फेरा और कहा कि बहन जाओ, हमने तुम्हें इनको दे दिया है, तुम यहां सुखी रहोगी। अब गाय को कहां ये सब बात समझ में आती है कि किसको दे दिया, कोई ऐसा किसी को ले सकता है, पैसे में ले सकता है क्या, ऐसे थोड़ी ले सकता कोई पैसे में किसी को, प्यार से तो कोई किसी को भी अपना सकता है। अब गाय कैसे एक सेठ को अपना मान ले, सेठ ने खरीदा होगा 1200 रुपए में, गाय ने थोड़ी अपने को बेचा है 1200 रुपए में। नहीं गई, धीरे से जाके कहा कि मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है, जाओ बहन जाओ, मैं यहीं हूं, अब तो जाना पड़ा। कि किसी की लाश हमारे हाथ में हो तो अपने लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेइज्जती भी हो जाती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाय के साथ ऐसा घटित हो सकता है, आदमी के साथ घटित हो जाए नहीं। चली गई गाय, लेकिन मुश्किल, गाय जा सकती है। दूसरे दिन समस्या खड़ी हो गई कि दूध नहीं देती, कहते थे कि 5 किलो देती है, एक बूंद नहीं देती। 5 किलो दूध के लिए मैंने गाय मंगाई थी, एक बूंद नहीं देती। आया, उसने कहा लाओ बर्तन लाओ। बर्तन लाया, गाय पर हाथ रखा और दूध निकालना शुरू किया, तो 5 किलो दूध तो था ही, तो दे दिया, जिसका था उसे दे दिया, उसे ही दिया जा सकता जिसका है, और किसी को कैसे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे कब तक काम चलेगा? जिसकी हो गई है अब गाय, उसे न देना पड़ेगा दूध। अब रोज एक न एक झगड़ा शुरू होता कि आज तो 1 किलो दिया, कल तो को 2 किलो दिया, परसों को 3 किलो दिया, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जहां पर वो चौकीदारी का काम करता था किसान, उस सेठ के यहां पर उसके आसपास जब किसान जागा तो सारा दूध फैला हुआ पड़ा था। कौन फैला के गया? सेठ को फिर संदेह हुआ कि ये तो किसान की ही कारगुजारी है, रात में गाय को लगा लेता होगा, आज दूध गिर गया है। किसान से कहा गया कि जाओ खोज करके आओ, ये सब कैसे घटित हुआ। किसान हक्का बक्का, करे तो क्या करे, जाकर के गाय के पास पहुंचा कि बहना ये क्या करती हो, ये तुम रात मेरे पास आई और ये इतना सारा यहां दूध गिरा के गई, क्या मेरी जान खतरे में डालोगी? अरे कोई अपने की जान खतरे में कैसे डाल सकता है। अब कहते हैं कि गाय पहली बार अपनी जिंदगी में आदमी की तरह बोली थी। आदमी भले ही आदमी से आदमी की तरह ना बोल पाए, लेकिन आज जानवर तो बोल सकता आदमी से आदमी की आवाज में, और आदमी हो तो अगर जानवर भी बोले तो वो आवाज सुनाई पड़ सकती है। आदमी हो तो था वो किसान आदमी और थी वो गाय आदमियत के निकट, इसलिए दोनों के बीच एक संवाद हुआ। आप कहानी की तरह सुन रहे हैं, सुन लीजिएगा, कहानी की तरह सुन लीजिए, मैं जिंदगी की तरह सुना रहा हूं। और संवाद सिर्फ इतना ही सा था, गाय ने यह कहा कि सुनो तुम मेरे मालिक हो और तुम कहते हो कि मैंने, तुम कहते हो कि तुमने मुझे कुछ रुपयों में अपने मालिक को बेच दिया है, तो ठीक है मैं मालिक की हो गई 1200 रुपयों में, लेकिन मेरा अधिकार मुझ पर नहीं है। मेरे इस शरीर पर जिसने खरीदा है उसका अधिकार है, सो मैंने उसे वो दे दिया, लेकिन मेरे दूध पर तो मेरा भी अधिकार नहीं है। मेरे दूध पर तो जहां स्नेह है उसका अधिकार है, और वो तुम्हारे पास मिलता है, इसलिए उस पर अधिकार तो तुम्हारा है। तुम भले ही कहो कि तुमने मुझे किसी को बेच दिया है, बस इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। और चुपचाप किसान ने अपना सिर झुका के, और कहते हैं कि खूंटे से गाय को छोड़ करके बहुत शान के साथ आकर के सेठ से कहा था कि चुका दूंगा 1200 रुपए एक एक करके चुका दूंगा, गाय ले जा रहा हूं मैं, बेच नहीं सकता। और किसान अपनी गाय अपने गांव वापिस लेकर के लौट आया था। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना कि पता नहीं गाय लौट के आई थी या हमारी संस्कृति लौट के आई थी, पता नहीं गाय लौट के आई थी या कि हमारी मां लौट के आई थी, पता नहीं गाय लौट के आई थी कि हमारा प्यार लौट के आया था, क्या हम भी सबके प्रति सह अस्तित्व मैत्री वात्सल्य जो हमने लगभग पैसे में बेच दिया है, क्या हम शान के साथ उसे वहां से छोड़ करके अपने घर अपने गांव नहीं लौटेंगे? हमें लौटना चाहिए, ये प्रयास अपने गांव अपने घर अपने परमात्मा तक अपनी आत्मा तक अपनी सद्भावनाओं तक लौटने के लिए है। आप लौटेंगे तो हमारी इस पूरी आयोजना का इस पूरी महोत्सव की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस कामना के साथ मैं इस भावना के साथ आपके साथ आज नमोकार कर रहा हूं कि हम सब अपने इस एक जीवन में शेष जीवन में अपने अधिक से अधिक निकट लौटने की सच्चाई को पाने की कोशिश करेंगे।
तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा अराजकता अन्याय भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे समोसरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंच बालकृति मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एबी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गल, आज सागर जैसा संत चाहिए।